सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद नौवा अध्याय के 23वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3, 9, 23। एषा प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्त्या यद् यद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलम् च यथा विजयः। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हों, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। तात्पर्य, भौतिक सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हैं, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की, ना कि अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कलमश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सचिवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो हम लोग भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उस पर, और ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि करने की इच्छा थी। तो सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी जो है वो भगवान विष्णु की, कृष्ण की जो है स्तुति कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। सो इस श्लोक में, इस अध्याय में जो 9वां अध्याय है, ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, है ना, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो और पूरी सृष्टि आपकी अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई और कार्य कर रहा है, सब कुछ आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। और भगवान कृष्ण भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं भगवद गीता में। भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया कि हे अर्जुन, धनंजय अर्जुन, मैं मुझसे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर कोई किसी को लग रहा है कि वो श्रेष्ठ है, अगर कोई वस्तु भगवान से श्रेष्ठ है तो उसकी भूल है, है ना। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, असम ऊर्ध्वा, है ना। असम ऊर्ध्वा जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, असम और ऊर्ध्वा, कि ना तो कोई भगवान के समान है और ना ही कोई भगवान से ऊपर है, मतलब श्रेष्ठ है। हर जीव, हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान के अधीन है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकला ईश्वरा कृष्णा और सब भृत्या, जे जायसे नचाय से तायसे करे नृत्या। जैसे भगवान नचा रहे हैं सब वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ भगवान ही ईश्वर हैं, भगवान ही स्वामी हैं, बाकी सब लोग उनके दास हैं, नौकर हैं, है ना। तो इस अध्याय में प्रभुपाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं, तो पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा होगा। सो एक जो प्रश्न प्रभुपाद ने उठाया कि जब ये बात क्लियर है कि कृष्णा भगवान है, और कलयुग में जो है हरि नाम ही जो है एकमात्र औषधि है भवसागर पार करने की, तो फिर ऐसा किस प्रकार से है कि लोग जप नहीं करना चाहते, लोग भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग दुर्भाग्यशाली हैं। सिर्फ दुर्भाग्य ही एकमात्र कारण हो सकता है कि ये औषधि सब जगह अवेलेबल है, और सुलभ है, कुछ कीमत नहीं है, फिर भी इसको स्वीकार नहीं करें। ये उसी प्रकार है कि जैसे हवा, प्योर ऑक्सीजन हवा अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन कोई व्यक्ति सांस ही नहीं लेना चाहे और बोले मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ हो रही है तो सांस ले लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, है ना। दूसरा प्रश्न जो प्रभुपाद और ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सबके कल्याण के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हो, है ना। आत्म माया, आप अपनी जो आपकी अपनी योग शक्ति है उससे, जो आपकी अंतरंगा शक्ति है, योग माया है, उससे आप अवतरित हो रहे हो, है ना। और भगवान भी कह रहे हैं संभवामी आत्म माया, कि मैं अपनी योग शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से प्रकट हो रहा हूँ। बहिरंगा शक्ति भगवान को छू भी नहीं सकती, हालांकि बहिरंगा शक्ति भगवान से प्रकट है, लेकिन भगवान बहिरंगा शक्ति के प्रति उदासीन बने रहते हैं, उससे कुछ संपर्क नहीं करते। सो प्रश्न ये उठता है कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अवतरित होते हो सभी जीवों के परम कल्याण के लिए, क्योंकि आप सब जीवों का कल्याण चाहते हो। और कृष्ण भी कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, मैं सबका सबसे बढ़िया मित्र हूँ, मुझसे बढ़िया मित्र नहीं मिलेगा आपको, है ना। भगवान कृष्ण इस बात की पुष्टि भगवद गीता में कर रहे हैं, पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर यह पता लग गया, ज्ञात्वा माम, अगर आपने इस तरह से समझ लिया कि मैं ही आपका परम मित्र हूँ और मैं आपके कल्याण के लिए सोच रहा हूँ, है ना, इतना समझ लिया तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। फिर आप जो है जो भौतिक ताप है इससे आप कष्ट, जो कष्ट है उससे प्रभावित नहीं होंगे, है ना। फिर आप अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं, है ना। विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा संसार हालांकि दुखालयम है, हालांकि अशाश्वतम है, फिर भी आपको विश्वम पूर्ण सुखायते, आपको ऐसा लगेगा सब चीज अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि तदीय वस्तु है, भगवान की वस्तु है, भगवान की सेवा के निमित्त है। अगर इतना बात समझ लिया तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम ये सोचेंगे कि ये भगवान की एक विशेष योजना है हमारे शुद्धिकरण के लिए, है ना। क्यों भगवान हमें इस विपत्ति में, इस तथाकथित विपत्ति में डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान सुहृतम सर्वभूताना, क्योंकि भगवान जो है हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। तो जिस प्रकार पिता कई बार अपने पुत्र के कल्याण के लिए उसको डांटता है, इसी प्रकार भगवान कभी कभी हमें संकट में डालते हैं ताकि हम सुधर जाएं, हम इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़ें और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाएं, है ना। सुहृतम सर्वभूतानां। और प्रभुपाद दूसरा यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सबके हृदय में विराजमान हो, आप सर्वव्यापी हो, हाँ आप कण कण में विराजमान हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भगवान कण कण में विराजमान है तो भगवान सबके हृदय में भी विराजमान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है का मतलब है कि भगवान भक्त के हृदय में भी हैं और भगवान अभक्त के हृदय में भी हैं, नहीं? सो फिर ऐसा किस प्रकार है कि जब भगवान अभक्त के हृदय में बैठे ही हैं तो भगवान उसको प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे कि भाई भक्त बन जा, भगवान के लिए क्या मुश्किल है? नहीं, भगवान किसी भी व्यक्ति को भक्त बना सकते हैं, नहीं? सो प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं लेकिन जो अभक्त है ईर्ष्या के कारण उस प्रेरणा को स्वीकार नहीं करता। उस जो अभक्त है उसका जो हृदय है वो एक बंजर भूमि की तरह है, एक बंजर भूमि की तरह है। जिस तरह बंजर भूमि में आप जितने मर्जी खाद बीज पानी डाल दो, उसमें कभी भी जो बीज है वो कभी अंकुरित नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अभक्त को लेकिन जो अभक्त है उसको स्वीकार नहीं कर पाता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो बंजर भूमि की तरह यथावत बना रहता है और भगवान के प्रति समर्पण नहीं करता। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि करना तो चाहता हूँ लेकिन आप प्लीज़ ऐसी कृपा करें कि मुझ में कभी अभिमान नहीं आए, मैं कभी ये ना सोच बैठूं कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, कर मैं रहा हूँ सृष्टि लेकिन किस दृष्टिकोण से मैं सृष्टि कर रहा हूँ, मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक यंत्र हूँ, और अगर यंत्र के द्वारा कुछ काम हो रहा है तो उसमें यंत्र का कुछ यश नहीं है, यश उस व्यक्ति का है जो उस यंत्र को चला रहा है ना। सो आप प्लीज मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं कितना भी अच्छी सृष्टि क्यों ना कर लूं, मैं हमेशा ये ध्यान रख पाऊं कि मैं सिर्फ एक यंत्र हूं, करने वाले आप ही हो, है ना। और भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, ये सारी सृष्टि जो है वो मेरे संरक्षण में चल रही है। और अन्यथा एक अन्य स्थान पर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उपदृष्टा अनुमंताचा, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहा हूं मैं ही इसको देख रहा हूं, मैं ही और उपदृष्टा मैं देख रहा हूं हर वस्तु को कैसे हो रही है, और अनुमंताचा और मैं अनुमति भी दे रहा हूं, मैं सहमति दे रहा हूं, ठीक है आप कर लीजिए, है ना। सो क्योंकि हर काम भगवान के आदेशानुसार हो रहा है, भगवान के निरीक्षण में हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए हम सब लोग निमित्त हैं। अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वो अच्छा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान जो है वो हमें शक्ति दे रहे हैं। जिस प्रकार हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने एक छलांग लगाई लंका पहुंच गए, और जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी गए संजीवनी बूटी पूरा पहाड़ी उठा के ले आए, है ना। और रावण की सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, अनेक प्रकार के उन्होंने कार्य किए, लेकिन उन्होंने कभी भी कर्ता अभिमान नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कर रहा हूँ, मुझ में कितना दम है, मेरे कारण से देखो कितने सारे कार्य हो गए। उनको हमेशा इस बात का बोध था कि जो भी कार्य हो रहा है वो मेरे प्रभु मेरे स्वामी की इच्छा से हो रहा है, उनकी प्रेरणा से हो रहा है, उनकी शक्ति से हो रहा है, मुझ में अपने आप में मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है करने के लिए, है ना। अगर हम इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अगर जैसे इस्कॉन में भी रहकर संस्था में रह के हम बहुत अगर कुछ अच्छी सेवा कर दी तो मन में अभिमान आ जाता है, मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं बहुत अच्छी आरती करता हूँ, मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सो वो आपके साथ नहीं जुड़े हुए, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, आप अच्छा कीर्तन इसलिए कर पा रहे हो, आप अच्छा लेक्चर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि गुरु की और कृष्ण की जो है मर्सी है, कृपा है, कृष्ण और गुरु आपको यूज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करने के लिए। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को बोला, देखो अर्जुन आप युद्ध लड़ो लेकिन कर्ता अभिमान मत करना कभी भी, है ना, निमित्त मात्र भव सव्य साचित। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रहा तो हमारे मन में जो है अभिमान आ सकता है, और प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं फॉल्स प्रेस्टीज, झूठा अहंकार, कि झूठा अहंकार आ सकता है कि मैं ही कर रहा हूँ हर काम, है ना। जैसे कई बार ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, इंद्र सोच रहे हैं कि मैं ही वर्षा कर रहा हूँ, सारा पूरे संसार को मुझे सम्मान देना चाहिए, पूरे संसार को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं वर्षा का स्वामी हूँ, मेरे कारण ही लोगों को जीवन दान मिल रहे हैं। हालांकि सारी शक्ति भगवान से आ रही है लेकिन कई बार दिमाग खराब हो जाता है, और अगर झूठा अहंकार मन में आ जाए तो उससे बहुत अच्छी सेवा करने पर भी व्यक्ति दूसरे भक्तों के प्रति अपराध करने लगता है, है ना। जैसे हम उदाहरण में हम देखते हैं कि झूठा अहंकार मन में आया तो राजा वेण था, हालांकि कुछ गुण नहीं थे राजा वेण में, आप भागवत में पढ़ेंगे राजा वेण की कथा आती है, लेकिन क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था और कोई था नहीं तो ब्राह्मणों ने राजा वेण को गद्दी पर बिठा दिया, तो वो सोच रहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को बोला कि सारे विष्णु यज्ञ बंद कर दो और मेरी पूजा करो, तो ब्राह्मणों ने एक मंत्र पढ़ा और उसको मार दिया, उसका वध कर दिया उसका। इंद्र की हमने बात की कि इंद्र जो है उसने गर्वित होकर कितना बड़ा उसने अपराध किया ब्रजवासियों के प्रति, है ना। इंद्र जब एक बार इंद्र गर्वित हो गया अपने गुरु के प्रति अपराध कर बैठा, तो उस कारण से उसको स्वर्ग से छोड़ के जाना पड़ा, और उस समय जो स्वर्ग पर राजा नहुष जो है उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया, जो राजा नहुष है उनके मन में भी अभिमान आ गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, और शची देवी के श्राप, जो इंद्र की पत्नी है उनके श्राप के कारण सांप बन के उसको नीचे गिरना पड़ा। सो हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं कि जो झूठा अहंकार है वो किस प्रकार भक्तों को भी प्रॉब्लम देता है, भौतिक व्यक्तियों को तो प्रॉब्लम दे ही रहे भक्तों को भी बहुत प्रॉब्लम देता है। हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कई भक्त चतुर्मास्य रखते हैं, फिर सोचते हैं कि मैंने चतुर्मास रखा, मैंने कितनी तपस्या की, भीष्म पंचक्र कई लोग भक्त जो है वो आप बहुत सोचते हैं कि मैंने बहुत महान तपस्या की है, लेकिन भगवान का दर्शन, भगवान का सानिध्य तपस्या से नहीं मिलेगा। भगवान का जो सानिध्य है, भगवान का दर्शन जो है वो विनम्रता से मिलेगा, वो भक्ति से मिलेगा। हाँ, और चैतन्य चरितामृत में हम इसका प्रसंग देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु, आप सबको पता है, शिवास आंगन में रोज जो है नृत्य कीर्तन करते थे, पूरी रात चलता था नृत्य कीर्तन। तो एक बार वहाँ पर एक ब्राह्मण आया और उसने शिवास पंडित को बोला कि मैं भी जो है चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखना चाहता हूँ, मैं भी उनके कीर्तन में भाग लेना चाहता हूँ। तो शिवास पंडित कभी किसी को मना नहीं करते थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है आप आ जाओ। तो उन्होंने बोला मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैंने पूरा जीवन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, सिर्फ दूध पे ही जीवित हूँ। आप अगर सोच के देखो, अगर बहुत कोई विरला होगा लाखों में एक जो सिर्फ दूध पर ही जिए जा रहा है, कुछ और खा ही नहीं रहा है ना। वृंदावन में भी मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो सिर्फ दूध ही पीता है गाय का, और लोग बहुत प्रभावित हैं उस व्यक्ति से कि सिर्फ दूध पी रहा है। तो श्रीवास पंडित ने कहा आप तो बहुत तपस्वी हो, तो चलो आप आ जाओ, आप देख लो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन। लेकिन जब श्रीवास पंडित उसको लेकर गए उस ब्राह्मण को, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये बाहरी व्यक्ति है, इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसके यहाँ रहते हुए मैं कभी भी नृत्य और कीर्तन में सुख का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, इसको भगाओ यहाँ से। तो ब्राह्मण ने कहा मैंने तो बहुत तपस्या की है, मैंने तो आज तक अन्न का दाना भी नहीं खाया, सिर्फ दूध ही पिया है कि भगवान किसी तरह से मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा दूध पीने वाले ब्राह्मण, तेरे दूध पीने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और वो भक्ति जो विनम्रता पूर्वक की जाए। तुम्हें ये अहंकार है कि तुम दूध पीने वाले ब्राह्मण हो, तो क्योंकि तुम्हारे मन में ये अहंकार है कि तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, तुम्हें भगवान का कभी दर्शन नहीं होगा। तो वो ब्राह्मण ने अपनी गलती को समझा और उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और उसने अपने तपस्वी होने के अहंकार को त्यागा। तो फिर उसको चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कोई बहुत बड़ी तपस्या कर लें या कोई बहुत बड़ी सेवा कर दें अगर भगवान के लिए, गुरु के लिए, तो भी उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे विनम्रता रूपी गहने से। जब तक आपके गले में विनम्रता रूपी हार नहीं डला होगा, भगवान आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तिने सदारे, कि हमेशा हमेशा अमानत रहो, हमेशा ये सोचो कि मैं किसी भी सम्मान के योग्य नहीं हूँ, और दूसरों को हमेशा सम्मान की भावना से देखो, दूसरों को आदर दो, क्योंकि आप आदर के हकदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जो भी अच्छा कर रहे हो वो उसमें आपका श्रेय नहीं है, आप तो एक यंत्र हो, है ना। ये समझकर एक तो क्या ये भक्त को ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं यंत्र हूँ तो दूसरा भक्त भी तो यंत्र है, तो इसको क्यों सम्मान दूं? तो एक यंत्र दूसरे यंत्र को क्यों सम्मान दे, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, ये भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही नीच हूँ, लेकिन गुरु ने और कृष्ण ने कृपा करके मुझे अपनी सेवा में नियुक्त किया। लेकिन बाकी जो भक्त हैं, इनके पूर्व जन्म जो है, पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत सारे जो है भक्ति की इन्होंने, और इस जन्म में भी शुरू से भक्ति में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन्नत भक्त हैं, तो मेरे जो है मैं इनको मुझे सम्मान देना चाहिए इन भक्तों को, है ना। उसे दूसरे भक्तों को यंत्र नहीं समझना चाहिए, यंत्र केवल अपने आप को समझना चाहिए। सो प्रश्न उठता है कि विनम्रता की भावना वास्तव में आएगी कैसे, विनम्रता की भावना का अनुशीलन करें तो करें कैसे। तो हम विनम्रता की भावना का अनुशीलन कर सकते हैं भगवान कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला 4:34 में कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि आप गुरु की शरण लो। जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे, जब तक हम वरिष्ठ वैष्णवों की शरण नहीं लेंगे, तब तक हमारे मन में कभी भी विनम्रता का भाव आ ही नहीं सकता। हालांकि हम, हो सकता है बाहरी तौर पर भक्त मिले तो हम उनको हरे कृष्णा झुक के बोले, लेकिन अपने मन में हम हमेशा यही सोचेंगे कि मैं इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, है ना। लेकिन अगर हम गुरु की शरण लेते हैं, अगर हम जो वरिष्ठ वैष्णव हैं जिन्हें कई वर्ष हो गए हैं प्रभुपाद की सेवा करते हुए इस्कॉन में, अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हम वास्तव में विनीत बन सकते हैं। और गुरु की शरण लेने का मतलब क्या है, वरिष्ठ वैष्णव की शरण लेने का मतलब क्या है, वरिष्ठ वैष्णव की शरण लेने का मतलब है कि हम उनकी आज्ञा को माने और उनकी आज्ञा को हम जो है उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएं। हम ये नहीं सोचें कि जो गुरु ने ऐसी आज्ञा तो दी है लेकिन मुझ पे ये जो आज्ञा है ये एप्लीकेबल नहीं है, मुझ पे लागू नहीं होती। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि अपने सभी शिष्यों को प्रभुपाद ने सावधान किया कि आप वृंदावन में जाके जो दूसरे वृंदावन में और बाबा जी हैं या और लोग भक्ति में लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से, उनसे सावधान रहना, उनका संग नहीं करना। सो कई बार भक्त सोचते हैं कि प्रभुपाद तो बार बार यही बोले जा रहे हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, समझो इस बात को कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। तो ये सुनने में बहुत नीरस लग रहा है, कुछ रस वाली बात हम सुनना चाहते हैं। तो वो जाते हैं इस कौन से बाहर दूसरे जो उनको दूसरे भक्त लगते हैं जो कि बहुत रसिक कथा सुना रहे हैं, हाँ, और वो कथा को सुन के वहाँ पर बैठकर रोते हैं वो, हाँ। सो ऐसे भक्तों को हम नहीं कह सकते कि वो प्रभुपाद के प्रति पूर्ण शरणागत है, हालांकि वो जय शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, हालांकि वो प्रभुपाद ने जो बोला कि 16 माला का जप करो और प्रभुपाद के इस्कॉन में रहकर वो प्रसाद भी वहीं से खाते हैं लेकिन कथा सुनने के लिए कहीं और जाते हैं, ऐसे लोग प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट बोला है कि आप वृंदावन के दूसरे जो बाबा जीज हैं उनसे सावधान रहो, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो भक्ति में प्रॉब्लम आएगी, है ना। एक भक्त से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे कहता है कि देखो प्रभु हरिनाम ही सब कुछ है। तो मैंने उसको बोला हरिनाम ही सब कुछ है लेकिन गुरु की निर्देश के अंतर्गत रहते हुए ही हरिनाम सब कुछ है। आप ये नहीं सोच सकते कि हरिनाम मैंने आपसे ले लिया, शिक्षा कहीं और से लूंगा, कहीं और से जाके लेक्चर सुनूंगा। वो हो सकता है बहुत अच्छी बात कह रहे हो लेकिन हम लोग प्रभुपाद और गुरु परंपरा के अनुगत हैं। हम भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे प्रभुपाद और गुरु परंपरा के माध्यम से। तो अगर हम वास्तव में अपने आप को विनीत समझते हैं, अगर हम विनीत रहना चाहते हैं, विनम्र रहना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही कढ़ाई से, बहुत ही सख्ती से प्रभुपाद के आदेशों को यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा और उसमें कुछ भी हम बदलाव नहीं कर सकते कि मुझे ये चार प्रभुपाद की जो निर्देश हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ, ये चार स्वीकार नहीं करता। ऐसी मानसिकता जो है उसमें निष्ठा की कमी दिखाई देती है। अगर हम प्रभुपाद की कुछ शिक्षाएं मानेंगे कुछ शिक्षाएं नहीं मानेंगे तो इसका मतलब हम प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान नहीं है पूरी तरह से। तो अगर हम निष्ठावान नहीं है तो हम विनम्र नहीं है, क्योंकि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं उसके अंदर, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभुपाद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। प्रभुपाद को नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, तो मैं जो मेरे लिए अच्छा है मैं वो करूंगा, चाहे वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के विरुद्ध हो। इसको अतिक्रमण कहते हैं इसको। और अगर कोई बहुत बड़ा वैष्णव भी हो, अगर अपने गुरु की आज्ञा का, अगर प्रभुपाद के आदेशों का अतिक्रमण करेगा, अपने आप को गुरु से प्रभुपाद से ज्यादा बुद्धिमान अकलमंद समझेगा, तो वो कभी भी कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि कृष्ण कृपा आपके प्रयास से प्राप्त नहीं होगी, कृष्ण कृपा प्रभुपाद की गुरु की कृपा से प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता दुख सुख के संगे गचन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तक, कि आप जब तक निर्माण मोहा, जब तक आप मोह, जब तक आप निर्माण, जब तक आप अपने अहंकार को त्याग नहीं देंगे, जब तक आप ये नहीं सोच लेंगे कि गुरु को पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। चैतन्य महाप्रभु तक ने कभी अपने गुरु की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपने गुरु के सामने जाते थे तो बिल्कुल एक मूर्ख की भांति जाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी जीवा गोस्वामी, जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, षट गोस्वामी हैं, और प्रभुपाद के और जितने भी शिष्य थे, वो जब भी चैतन्य महाप्रभु के सामने जाते थे तो अपने दांत में तिनका दबाकर दूर से ही प्रणाम करते थे। वो ये सोचते थे कि हमें गुरु के सामने जाने का, हमें चैतन्य महाप्रभु के सामने जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु की, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को, शिक्षा को अच्छी तरह से हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूपा गोस्वामी, जो शास्त्रों में पारंगत थे, चैतन्य महाप्रभु के श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को, मन की इच्छा को समझने वाले थे, जब ऐसे रूपा गोस्वामी भी अपने आप को मूर्ख समझते थे, तो अगर हम अपने आप को समझदार समझें और सोचें कि हमें प्रभुपाद से ज़्यादा पता है, हम अपने दिमाग से चलेंगे, हमें पता है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो जब जप करें तो उनकी आंखों से आंसू बहते हों, लेकिन वो आंसू कृष्ण प्रेम से प्रभावित प्रेरित नहीं है, वो आंसू अहंकार से प्रेरित है। अगर हमें परवाह नहीं है कि हमारे में भगवान कृष्ण के प्रति भाव नहीं जागा, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें परवाह यह है कि क्या हम श्रील प्रभुपाद को, अपने गुरु को प्रसन्न कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या हम अपने गुरु को संतुष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या हम इस जीवन में अपने झूठे अहंकार को अपने गुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर पाए कि नहीं कर पाए। जब तक हम इस बात के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो हम कभी भी कीर्तनीय सदा हरि नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर आपने हमेशा भगवान कृष्ण का कीर्तन करना है तो अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से आश्रित रहना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि प्रभुपाद और गुरु हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हम अभी भौतिक धरातल पर हैं, वो आध्यात्मिक धरातल पर हैं। उनकी दृष्टि भगवान कृष्ण की दृष्टि से एक है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण इस जगत को और हरेक जीव को देख रहे हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद और गुरु इस संसार और हरेक जीव को देख पा रहे हैं। उनमें ये क्षमता है और क्योंकि उनमें ये क्षमता है, इसीलिए वे हमारा मार्गदर्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम गुरु के आदेशों को बहुत ही गंभीरता से लें। हाँ, और गुरु के आदेशों के अनुसार अपना जीवन बिताने की चेष्टा करें, तभी हम वास्तविक शब्दों में त्रिनादपि सुनिचेन कहला पाएंगे। तभी हम वास्तविक शब्दों में हम निर्माण मोहा कहला पाएंगे। और जब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे, तो गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हमें अवश्य भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, हरे कृष्णा।